त्वमीश्वराणां परमं महेश्वरं त्वं देवतानां परमं च देवतम् पतिं पतिनां परमं परस्तात् विदां देवं भुवनेषु ईड्यम्। पतंजल ने योगाश्चित्तवृत्ति निरोधा कहा है, पहला ही सूत्र है ये। अब वो चित्त की वृत्तियां क्या हैं जिनका हमने निरोध करना है, तो पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति ये लोग कहते हैं। तो प्रमाण में इन्होंने तीन प्रकार के प्रमाण लिए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। बाकी दूसरे जो आचार्य हैं चार प्रमाण भी मानते हैं, छह भी और आठ भी प्रमाण मानते हैं, परंतु वो जो शेष प्रमाण है पांच, वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के अंतर्गत हो जाते हैं। तो तीन ही प्रमाण प्रधान हैं। अब प्रत्यक्ष वृत्ति क्या हुई, तो प्रत्यक्ष का ये लोग लक्षण करते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय और अर्थ के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। कैसा वो प्रत्यक्ष हो, अव्यपदेशम, अव्यवचारी, व्यवसाय आत्मकम, जिसका उपदेश किया गया हो और जिसका उपदेश नहीं किया गया, उपदेश नहीं किया, ऐसा वो ज्ञान ना हो जिसका आचार्यों ने, विद्वानों ने उपदेश भी किया हो, और वो कैसा हो, निश्चयात्मक, व्यवसायात्मकम, वो ज्ञान निश्चयात्मक हो, विद्वानों ने कथन भी किया हो और निश्चयात्मक ज्ञान भी हो, और इंद्रिय और अर्थ के संयोग से वो उत्पन्न हुआ हुआ हो, तो ऐसा जो ज्ञान होगा उसका नाम प्रत्यक्ष होगा। अब इंद्रिय और अर्थ, अब ये कल से समाधि लगी हुई है, अब इसमें इंद्रिय और अर्थ का क्या चीज है, क्योंकि इंद्रिय और उनके विषय भी वृत्तियात्मक हैं। तो रात बतलाई थी पांच कर्म इंद्रिय हैं और इनके पांच विषय हैं, जैसे हाथ का हिलना, पैर का गमन आदि करना, ये इनके अर्थ हैं। पेशाब जाना, टट्टी जाना, वाणी से बोलना, ये इनके अर्थ हैं। तो इंद्रिय और अर्थ का अब ये सन्निकर्ष नहीं है, क्योंकि पैर का काम था गमन करना, वो उस अर्थ का भी अभाव कर दिया है, निरोध कर दिया है, अभाव नहीं निरोध कर दिया है, एकाग्र कर दिया। हाथ का हिलना आदि था, कहीं खुजाना है, ऐसे करना है, ऊपर उठाना, नीचे चलना, हिलना, तो उस अर्थ का भी निरोध कर दिया है। पेशाब जाना था कुछ घंटे के लिए, उसका भी निरोध कर दिया है। टट्टी जाना था, उसका भी निरोध कर दिया है। वाणी से कुछ बोल करके कहना था, उसका भी निरोध। तो ये इंद्रियों के जो अर्थ थे, ये पांचों कर्म इंद्रियों के, उन अर्थों का निरोध करा है, अभाव दे दिया। तो एक तो ये अर्थ होता है इंद्रिय और अर्थ, ये तो कर्मेंद्रियों के अर्थों की बात हुई। अब ज्ञानेंद्रियों के अर्थ का भी सन्निकर्ष होना था, जैसे नेत्र बंद है, अब इसका सन्निकर्ष होना था आपको देखना, किसी चीज को देखना, रूपात्मक बाह्य पदार्थों को देखना, तो उसका भी निरोध हुआ हुआ है। नासिका थी, कोई वहां ऐसा गंदादी का किसी प्रकार का कोई साधन ही नहीं है, जब कोई विषय ही पास नहीं है, तो वहां सन्निकर्ष भी वह सन्निकर्ष का भी वहाँ अभाव है या निरोध हुआ हुआ है। नासिका का हुआ इसी प्रकार रसना जिह्वा है, जब इसको कोई पदार्थ खाने को नहीं दिया है तो जिह्वा भी क्या बतलाएगी। तो जिह्वा जो ज्ञानेन्द्रिय में बड़ी प्रबल है उसका भी निरोध हुआ हुआ है। इसी प्रकार स्पर्शन इंद्रिय है तो उनका भी वह कोई स्पर्श की बात बनती नहीं है। हम हाथ लगाएं कोई कुछ करे या और वायु का धक्का लगे या कोई और चीज साथ में हर वक्त टच टच करती रहे तो पुनः पुनः वो स्पर्श की भी बात नहीं। तो ज्ञाने इंद्रियों का भी निरोध हुआ हुआ है, अर्थों के साथ संबंध का विच्छेद है। तो इंद्रियों के अर्थों के साथ संबंध का जो विच्छेद है कुछ काल तक, अब जैसे 10, 20, 50 घंटे विच्छेद रहना है तो इतने काल तक ये प्रत्यक्ष आत्मक वृत्ति का निरोध बना रहेगा। तो ये है इनकी प्रत्यक्ष आत्मक वृत्ति, जिनको इतना जोर दे के पहले ही सूत्र रख दिया कि भाई क्या नाम, इंद्रियों के संबंध का अभाव चित्त की वृत्तियों का निरोध। क्योंकि अब वृत्ति तो ये चित्त की थी, चित्त या बुद्धि एक ही बात आप अभी समझ लो, चित्त ने ही प्रेरणा करनी थी, हाथ को हिलना था, चित्त प्रेरणा नहीं करता। चित्त ने ही वह पैर को चलाना था, आदेश देना था, तो गमन का भी अभाव है। चित्त ने ही टट्टी पेशाब के लिए वह आज्ञा देनी थी या कर्म करना था, व्यवहार करना था, तो उसका भी अभाव है। तो इस प्रकार की चित्त की वृत्तियों का जिनका शरीर के साथ संबंध है और फिर इंद्रियों के और अर्थ के साथ संबंध है, तो शरीर के सब व्यापारों का, चेष्टाओं का, ज्ञान और कर्म इंद्रियों का ये निरोध, इसका नाम है निरोध। यहाँ अभाव ये लोग नहीं मानते किसी वस्तु का, ये कुछ देर ठहर जाना और फिर ये कहेंगे तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब ये सब इंद्रिय और अर्थों का संबंध विच्छेद हो जाएगा तब दृष्टा जो आत्मा है उसकी अपने स्वरूप में स्थिति होगी, क्योंकि चित्त के द्वारा उसका कोई व्यापार ही नहीं होगा। वृत्तियां तो चित्त की थी, चित्त की वृत्तियों का निरोध बना रहना है, तो उतने काल तक आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति बनी रहे। कर्म और ज्ञान इंद्रियों का अर्थों के साथ संबंध का जो विच्छेद है, केवल इतनी ही बात नहीं है कि इस विच्छेद से ही आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अब इनके अर्थ और इंद्रियों के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होना है वो चित्त में होता है, क्योंकि वृत्ति भी चित्त की है, ज्ञान भी उसमें होगा और ज्ञान भी चित्त का ही धर्म है। अविद्या या विद्या, विद्या कहते हैं ज्ञान को, ये चित्त के ही धर्म है, इसकी ही वृत्ति विशेष है। अब उसकी बात तो सारी कहनी है, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है। अब इंद्रिय और अर्थ का, अर्थों के अंदर आत्मा तो आता नहीं, कोई इंद्रिय आत्मा को भी ग्रहण नहीं करती और अर्थों के अंदर बुद्धि और मन भी नहीं आते, क्योंकि ये तो इंद्रियों के विषय नहीं हुए मन और बुद्धि। ये आँख का तो विषय हो गया, रूप हो गया, कान का शब्द हो गया, तो ये बुद्धि और मन तो अलग चीज है, इनकी बात अभी नहीं कही। तो केवल इंद्रियों है और अर्थ के सन्निकर्ष का संयोग का निरोध किया है, अब बाकी और भी तो वृत्तियां हैं ना, केवल एक ही तो वृत्ति दी। अब इन्होंने अनुमान की भी वृत्ति कही है और शब्द प्रमाण की भी वृत्ति कही है, तो अनुमान क्या होगा? अब यहाँ अनुमान की, इंद्रिय और अर्थ के विषयों के अनुमान की बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाता है। तो अनुमान तो वो होता है कि जहां इंद्रिय कामना करती हो जैसे दूर देश है, यहाँ से कलकत्ता है, बम्बई है, वहाँ के बाजार में कोई कर्म हो रहा है, मेरी आंख नहीं देख रही, या वहाँ किसी की स्पीच हो रही है, मेरा कान यहाँ नहीं सुन रहा है। तो दूर देश में तो जो व्यवहार हो रहा है तो वो भी नेत्र का ही विषय, पर ये नेत्र इस वक्त उसको नहीं देख रहा, तो वहाँ की स्पीच का फलाने टाइम में जो रेडियो आदि पर आ जाते हैं, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री की कल स्पीच हुई थी, लेक्चर हुआ था, तो हमारे कानों ने तो सुना नहीं, परंतु हुआ तो वहाँ था, तो उसका हमें अनुमान करना पड़ेगा। किसी और शब्द के द्वारा किसी ने कहा है, या पहले हमको संकेत कर दिया था फलाने टाइम में उनका लेक्चर होना है, तो वह शब्द प्रमाण के द्वारा हमें पहले बोध कर दिया था और फिर हमने अनुमान कर लिया, तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान हुआ करता है और शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष पूर्वक ही हुआ करता है। जिस विषय का, जिस पदार्थ का पहले प्रत्यक्ष हुआ है, उसका ही हम अनुमान कर सकते हैं और उसको ही शब्द प्रमाण के द्वारा कह सकते हैं। अब आत्मा का तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं, परमात्मा का तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं, और इंद्रियों के परिकर्ष का भी विषय वो नहीं बना, तब वो प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि प्रमाण के अंतर्गत आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। पर आपको प्रत्यक्ष नहीं हुआ, इनको प्रत्यक्ष नहीं हुआ, किसी को तो प्रत्यक्ष हुआ होगा। अगर मुझे और आपको प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तीसरे आदमी को तो हो सकता है, जो वहां बैठा है उसको तो हो रहा, जो वहां लेक्चर सुन रहा है उसके तो कानों का विषय बना हुआ है ना। अगर मुझे और आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, तीसरे आदमी को प्रत्यक्ष हो रहा, तो वो उसके प्रत्यक्ष को हमें प्रमाण मानना चाहिए। तो इसलिए वो भी अनुमान जो प्रमाण है, शब्द जो प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही आ जाता है। बहुत से आचार्य तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और प्रमाण नाम की कोई चीज ही नहीं है। विषयों के संपर्क का हमने विच्छेद कर दिया, परंतु अभी और भी ऐसी चीजें हैं जो उत्पन्न हो रही हैं, जैसे मोह है। अब मोह बतलाओ किस इंद्रिय का विषय था? आंख का विषय नहीं बना, कुरूप को दिखाती है। कान का विषय नहीं बना, शब्द को बतलाता है। स्पर्श का विषय नहीं बना, क्योंकि छूने की बात बनती नहीं है मोह। तो मोह और राग एक ऐसी चीजें हैं जो इंद्रियों के विषयों से अलग बात है। अब इनका भी तो निरोध होना चाहिए। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, भ्रांति है, ये भी तो वृत्तियों के अंतर्गत हैं। तो केवल प्रत्यक्ष वृत्ति कहने से ही तो सारी वृत्तियों का अभाव नहीं हुआ, ये भी वर्तमान है। अब ये जिसके धर्म है, जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, चाहे तुम मन में कहो चाहे बुद्धि में कहो, अब उसके धर्म ये इसके विषय कहलाएंगे, किसके बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में ही राग पैदा होता है, बुद्धि में ही द्वेष पैदा होता है। तो ये जो विषय हैं, ये इंद्रियों के अंतर्गत नहीं आते थे, तो केवल इंद्रियों के निरोध करने से आत्मा की स्थिति अपने स्वरूप में नहीं होगी, मन बुद्धि के विषयों का भी निरोध करना पड़ेगा। तो बुद्धि के विषय बहुत बन जाते हैं। वैसे तो आंख का एक ही विषय था रूप, पर रूप भी तो अनेक प्रकार के हैं, तो अनेक प्रकार के रूप मेरे राग और मोह का हेतु बन जाते हैं, एक ही रूप तो नहीं। तो उन रूपों का भी भेद करने वाली भी बुद्धि ही होती है, आंख रूपों का भेद नहीं बतलाती। तो इसलिए अब बुद्धि के धर्म और कठिन हो जाते, और बुद्धि के जितने धर्म हैं वो सब वृत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इतने धर्मों का भी हमने निरोध करना है, राग का भी निरोध करना है। बैठा हूं कोई बात नहीं, पत्नी की बेटे की स्मृति आ रही है, वहां राग काम कर रहा है, मुझे मोह उत्पन्न हो रहा है बेटे के साथ पति के साथ कहा, और मैं तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, ऐसी भावना दूर बैठे बैठे इंद्रियों की बात नहीं, केवल स्मरण आ रहा मोह के रूप में, राग के रूप में या द्वेष के रूप में किसी का स्मरण आता है, वहां घृणा की, नफरत की, द्वेष की भावना पैदा होती है। तो ये और भी तो विषय हैं, केवल इंद्रियों के ही तो विषय नहीं, तो इस बुद्धि के भी अनेक विषय हैं। तो उन विषयों का भी निरोध करना है, उन अर्थों से भी बुद्धि को हटाना है। ऐसे ही तो नहीं, क्योंकि बुद्धि के इतने अनंत विषय हैं, कोई अंत ही नहीं इसके विषयों का। तो जितना अज्ञान और ज्ञान आत्मक पदार्थ हैं, सब बुद्धि के ही विषय बनते हैं। अगर बुद्धि का संयोग आंख के साथ ना हो तो आंख देखते हुए भी नहीं देखा करती। अगर बुद्धि का देखो, निद्रा की अवस्था में निद्रा एक वृत्ति होती है, उस काल में कान के साथ और आंख के साथ बुद्धि का संयोग नहीं होता। कान शब्द भी नहीं सुनाते, गाना कोई गाता रहे सुनता ही नहीं सोया हुआ आदमी, तो रूप को भी नहीं देखता, शब्द को भी नहीं सुनता, स्पर्श को भी नहीं सुनता। तो इसलिए और भी अनेक वृत्तियां बन जाती हैं। तो ये सारा जगत और इसका ज्ञान सब वृत्ति आत्मक है। कहां इतना निरोध हो जाएगा हमसे, हमारी तो मैं तो पागल सा हो गया निरोध करते कोई एक आध दस बीस चीज होती, चलो भाई दस इंद्रियों के विषय थे और लड़की बैठ गई वहां चुप कर करे दो चार दस दिन, पर अगर वो बैठे हुए वहां बहन का चिंतन करती रहे, माँ का चिंतन करती है, तो वो इंद्रियों का विषय थोड़ा है, उसको कौन रोकेगा, हम थोड़ा ही वहां देख रहे हैं। तो उसके मन में बुद्धि में तो कहीं राग उत्पन्न हो रहा किसी के प्रति, बहन के, भाई के, माँ के, बाप के, गुरु के, किसी और के प्रति, तो वो भी तो वृत्ति कहलाएगी, खाली इंद्रियों के विषयों की तो वृत्ति नहीं थी। तो इसलिए वृत्तियों का भी कोई अंत नहीं मिलता है, जितना बड़ा संसार है उतनी बड़ी इसकी वृत्तियां भी है। तो सारा संसार ही वृत्ति आत्मक है। तो अब आप ध्यान में मेडिटेशन में क्या करोगे, पहले अधिकार पूर्वक निद्रा जैसी अवस्था को लाओ, जैसे रात्रि को सोने जाते हो सब तरफ से अपने आप ही वृत्तियां हटने लगती हैं, मन सब तरफ से हटने लगता है और नींद की तरफ को जाने लगता है। तो ऐसी वृत्ति बनाओ इस जागृत में निद्रा के समय। अब जैसे कोई आदमी रात्रि को लक्ष्य बना के सोता है, मैंने सवेरे फलाने काम के लिए 4 बजे उठना है, तो उसका लक्ष्य होता है 4 बजे उठने का काम का। ऐसे ही लक्ष्य तो बनाओ तुम आत्मा को या परमात्मा को लक्ष्य बनाओ, पर निद्रा जैसी अवस्था लाओ पहले अधिकार पूर्वक। वहां तो बलात्कार से निद्रा आती है, जबरदस्ती आती है, और यहां इसीलिए तो अंतर है, यहां लाने से आएगी। अगर निद्रा लाने से आप ला सकते हो तो आत्मा और परमात्मा के भी पास पहुंच सकते हो। तो ऐसा संकल्प कर करके बैठो आत्मा का, कि आत्मा से मैंने मिलना है, परमात्मा से मिलना है, ये तो अपना संकल्प बना लो, और चारों तरफ से विचारों को हटा करके निद्रा की ओर ले जाओ। है निद्रा भी एक वृत्ति, पर और वृत्तियों का तो अभाव हो जाएगा, एक ही तो वृत्ति रहेगी। तो एक वृत्ति तो वो भी होगी, जब मैं देखूंगा ये परमात्मा है तो वो भी तो वृत्ति होगी, जब मैं ये देखूंगा ये आत्मा है, ये मैं हूं, या आपके आत्मा को देखूं ये आपका आत्मा है, तो वहां आत्मा का जो ज्ञान हो रहा है ये भी तो वृत्ति आत्मक है। तो वृत्ति का तो अभाव होता नहीं है आत्मा को देखते हुए भी और परमात्मा को देखते हुए। इसलिए आत्मा और परमात्मा भी ज्ञान की वृत्ति आत्मक ही है, वृत्ति आत्मक ही वो भी ज्ञान है। और जब इन वृत्तियों का निरोध हो जाएगा फिर न तो आत्मा को अपना पता रहना मैं कहा हूं और न परमात्मा का पता रहना और न शरीर का पता रहना। अब वो अवस्था आएगी उसको हम कह नहीं सकते क्या होगी भाई। वो आत्मा की जब स्वरूप में स्थिति होगी उसको वर्णन किससे करें किससे कहें, कोई देखने वाला नहीं था आत्मा को तो उस वक्त अपने स्वरूप में, क्योंकि ये कर्ण जो थे मन बुद्धि आदि ये भी शांत हो गए थे, ये अपने अपने स्वरूप में ठहर गए थे, अपनी अपनी स्थिति में ठहर गए थे। आत्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं वहां, वो तो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, कौन कहेगा, कोई नहीं कह सकता। पर है परमात्मा के साथ संबंध का जो टाइम है, आत्मा को देखने का जो टाइम है, स्वयं से स्वयं को तो नहीं देखा जाता, स्वयं से स्वयं को तो नहीं देखा जाता, वहां भी कोई माध्यम होगा दर्पण आदि। तो दर्पण तो बुद्धि का काम दे रही है, तो जब स्वयं से स्वयं को देखेंगे वहां बुद्धि काम कर रही है, तो बुद्धि भी तो वृत्ति आत्मक, बुद्धि का ज्ञान भी तो वृत्ति आत्मक है। तो इसलिए जब आत्मा के स्वरूप में स्थिति होगी उसके स्वरूप के वर्णन करने का कोई साधन नहीं, सब साधनों का अभाव होगा।